नमस्कार, मैं रविश कुमार। 24 जून को अमेरिका के फ्लोरिडा में एक इमारत के गिर जाने से 98 लोगों की मौत हो गई। जून से सितंबर आ गया, लेकिन अभी तक इस घटना को लेकर अमेरिका के अखबारों में खोजी पत्रकारिता हो रही है। हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ इस पर रिपोर्ट आती है। पता चलता है कि 100 लोगों के जीवन का क्या महत्व है। इमारत के रखरखाव में हुई लापरवाही को वहां का समाज और प्रेस कितनी गंभीरता से ले रहा है। 2019 में गुजरात के सूरत में तक्षशिला आर्किड में आग लगने से 22 बच्चे जलकर मर गए। उसके बाद क्या हुआ, आप खबरों को इंटरनेट में खंगाल कर देखिए। पीड़ित मां बाप हर साल धरना प्रदर्शन करते हैं और बात आई गई हो जाती है। भारत में मार्च और अप्रैल महीने में ऑक्सीजन के बिना लोग मर गए, लेकिन कह दिया गया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। कोरोना की दूसरी लहर के समय अस्पतालों की हालत पर थोड़ी बहुत चर्चाएं हुई, लेकिन उसके बाद चर्चाएं समाप्त हो गईं। अस्पतालों में सुधार के दावे कर लिए गए और मान भी लिया गया। हेडलाइन पढ़कर राहत महसूस करने वाली जनता पर ही आफत आती है। 2019 में बिहार में चमकी बुखार से 160 से अधिक बच्चे मर गए थे। कोरोना की दूसरी लहर के समय विवाद ही होता रहा कि मरने वालों की असली संख्या कितनी है। कोरोना और अन्य बीमारियों को लेकर कितनी तैयारी है, इसका नमूना आप देख सकते हैं। बिहार के समस्तीपुर के सदर अस्पताल में 10 अगस्त को आरटीपीसीआर जांच घर का उद्घाटन हुआ। उस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 जांच केंद्रों का उद्घाटन किया था ऑनलाइन, लेकिन एक महीना बीत जाने के बाद भी समस्तीपुर का जांच केंद्र चालू नहीं हुआ है। इस शानदार जगह में आरटीपीसीआर का बोर्ड टंग गया है। अंदर जमीन पर टाइलें लगा दी गई हैं और मशीनें रख दी गई हैं। कुछ उपकरण डब्बे में ही बंद हैं। हमारे सहयोगी हरेश्वर ने बताया कि लैब बंद है, उद्घाटन के बाद इसका दरवाजा नहीं खुला। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि बिहार में हर दिन 2 लाख टेस्ट होने चाहिए, लेकिन यह सेंटर बंद है। जब पूरा काम नहीं हुआ था तब इसका उद्घाटन क्यों किया गया। अस्पताल का बाहर से हाल आप देख सकते हैं। आम गरीब लोग कितनी कम सुविधाओं को विकास मान लेते हैं। खुद मुख्यमंत्री ऐसी जगह पर मलहम पट्टी तक न लगवाएं। कोरोना के 2 साल हो चुके हैं, फिर भी समस्तीपुर में आरटीपीसीआर की जांच का सिस्टम नहीं बन पाया है। यहां से सैंपल पटना एम्स जाता है। जांच के लिए माइक्रोबायोलॉजिस्ट की भी नियुक्ति नहीं हुई है। मार्च 2021 की संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट बताती है कि पटना एम्स में फैकल्टी के 305 पद मंजूर हैं, लेकिन 136 पद खाली हैं। नॉन टीचिंग के 1131 पद खाली हैं। एक वही अस्पताल है जो ठीक से चल रहा है, लेकिन उसकी हालत भी ऐसी है।
आरटीपीसीआर लैब का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 10/8/2021 को किया गया। उसके बाद उसकी प्रक्रिया चल रही है। आईसीएमआर का ये एक्रीडेशन हम लोगों को लेना था, सैंपल टेस्ट करके उन लोगों को भेजना था एक्रीडेशन के लिए, जो मुझे प्राप्त हो गई है। अविलंब इसी सप्ताह से आरटीपीसीआर की जांच समस्तीपुर में होने लगेगी। नहीं, अभी चालू नहीं। अभी हम लोग करीब 2500 से ज़्यादा लोगों का करा रहे थे, लेकिन फिर टारगेट रिवाइज किया गया है, तो अभी तक तो 2500 चल रहा है आरटीपीसीआर।
कोरोना की लहर आई तो दुनिया भर में अनगिनत बार कहा गया कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना ही होगा। कोरोना ने बता दिया है कि हमारी सेवाएं कितनी खराब हैं, लेकिन फिर भी राजनीति की प्राथमिकता में स्वास्थ्य बीमा कार्ड से अधिक नहीं है। बिहार में भी वायरल बुखार के कारण अस्पताल भरे पड़े हैं। अस्पतालों की विश्व स्तरीय सुविधाएं देखने लायक हैं।
पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का शिशु वार्ड कमोबेश सारे बेड भरे हुए हैं और आईसीयू में तो एक बेड पर 2-2 बच्चे। इनके अभिभावक का कहना है कि शुरू में वो बुखार को गंभीरता से नहीं ले पाए।
बच्चे को बुखार नहीं छूट रहा है, नमूनिया का पेशेंट है और बुखार 4-5 घंटा पर दवा देते हैं तो 4 घंटा पर बुखार आ जाता है।
अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि इस बार बच्चों के इलाज में कोई कमी नहीं है, उनके पास दवा भी है और ऑक्सीजन भी।
एक बच्चे का डेथ आज हुआ है और विगत 10 दिनों में केवल 2 बच्चों का डेथ हुआ है।
के लिए जितना संभव है सब काम किया जाता रहा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हर संभव सारे कदम उठाए जा रहे हैं।
अभी ऐसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन फिर भी अलर्टनेस, भाई कोई जानता है कल होकर के क्या कुछ हो जाए।
फिलहाल बिहार में खासकर सरकारी अस्पतालों में बेड मिलने के साथ ही इलाज में और अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
वायरल बुखार ने यूपी में भी उत्पात मचाया हुआ है। अभी कोरोना की दूसरी लहर में वहां गंगा के किनारे लाशों को दफनाने और कफन तक हटा देने की खबरों के बीच ऐसे भी बयान आए कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है, वो सुधार भी बुखार की भेंट चढ़ गया है। ये तस्वीरें यूपी के अलग अलग अखबारों में छपी हैं। बदहवास भाग रहे मां बाप की ये तस्वीरें बता रही हैं कि यूपी की जनता के भीतर ही जनता के लिए कोई सहानुभूति नहीं बची है। हर मामूली बीमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल रही है, लेकिन रस आ रहा है सांप्रदायिक बयानों में। जिस राज्य की आधी से अधिक आबादी दो वक्त के राशन के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर निर्भर रहे, उसे अब्बा जान का चूर्ण दिया जा रहा है। हमारे सहयोगी कमाल खान की यह पुरानी रिपोर्ट बहुत पुरानी नहीं है, कुछ दिनों पहले की है। दिन तो कई गुजर गए, लेकिन अस्पतालों को लेकर छपने वाली हेडलाइन बता रही है कि इलाज न मिलने के कारण बच्चे कैसे मर रहे हैं। 9 सितंबर के हिंदी अखबारों में फिरोजाबाद से ही खबर छपी कि स्ट्रेचर नहीं मिला तो पिता कंधे पर लाया बेटे का शव। अस्पतालों में स्ट्रेचर तक नहीं है। वायरल का प्रकोप कोरोना की तरफ भयानक नहीं, फिर भी इसके इंतजाम का ये हाल है और कोई बात नहीं कर रहा है। बच्चों की जान की जगह अब्बा जान की बात हो रही है, ताकि हिंदू मुस्लिम नेशनल सिलेबस लॉन्च हो जाए और घर घर में इसी की चर्चा होने लगे। यह प्रदेश राजनीति का मुर्दा जान बन चुका है। गरीब माँ बाप अपने बच्चों की मौत पर सर पटक कर रोने के लिए मजबूर हैं। अखबार हमेशा पुराना पढ़ा कीजिए। पिछले साल बरेली, आगरा, फिरोजाबाद में वायरल फैलने की खबरें छपी हैं। तुलना करने पर ही पता चलेगा कि 2019 से लेकर अब तक इन बीमारियों के मामले में स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या सुधार हुआ है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह लंबे समय से पद पर हैं। हमने उनके ट्विटर हैंडल को खंगाला इस उम्मीद में कि वायरल बुखार को लेकर कई सारी जानकारियां उन्होंने ट्वीट की होंगी। अगस्त से लेकर आज तक डेंगू बुखार पर स्वास्थ्य मंत्री का एक भी ट्वीट नहीं मिला है। वे अपने जन्मदिन पर ट्वीट करते हैं, मुख्यमंत्री योगी की रैलियों का ट्वीट करते हैं, अपनी विधानसभा में जो राहत कार्य कर रहे हैं उसके बारे में ट्वीट करते हैं और प्रधानमंत्री के ट्वीट को रीट्वीट करना नहीं भूलते हैं। यह भी हो सकता है कि मंत्री जी दिन रात काम कर रहे हों, लेकिन उन्हें ट्विटर पर अपने काम का प्रदर्शन करना ठीक ना लगता हो। आयुष्मान भारत की वेबसाइट पर डेटा है कि यूपी के फिरोजाबाद में 108 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ इस एक जिले में 100 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला फिरोजाबाद में हैं। सौरभ की आंखों के सामने ही 5 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। उसके माता पिता भर्ती कराने के लिए चिल्लाते रह गए।
इस माँ की चीखें दिल छेद देती हैं। 5 साल की सावन्या को परिवार वाले सुबह 8 बजे फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज लेकर आए। डॉक्टरों ने कह दिया जगह नहीं है। बच्ची बुखार से तड़पती रही और परिवार गिड़गिड़ाता रहा। लगभग 11 बजे बच्ची ने हमारे सामने ही दम तोड़ दिया। मीडिया ये सच्चाई दिखा ना दे तो आनन फानन में अस्पताल प्रशासन बच्ची का शव ले जाने लगा। सच छुपाने की हड़बड़ाहट में कई बार बच्ची का शव स्ट्रेचर से गिरते गिरते बचा। परिवार का आरोप है कि अगर बच्ची को समय पर इलाज मिलता तो सामान्या बच जाती।
अरे देखिए ये इसको ले भी जा रहे हैं, स्ट्रेचर भी ले जा रहे हैं, तो इस तरीके से ले जा रहे हैं कि जिसमें इंसान नहीं है, इंसान नहीं था, इस तरीके से आप लोग ले जा रहे हैं। ये बताइए,
खुद की बहन होती है माल बच जाती, किसी को खुद की बहन होती है माल बच जाती।
क्या बोले,
मना करती ये हालत इसकी सही है तो एडमिट नहीं कर सकते हम, जगह नहीं है।
आपकी बहन ने यही दम तोड़ दिया इलाज के बाद।
हाँ जी,
तो किसकी गलती मानते
ये डॉक्टर साहब की गलती पूरी की पूरी।
आपको लगता है अगर आपकी बहन को सही समय पर भर्ती कर लिया जाता तो वो बच जाती?
बच जाती मेरी बहन।
सावन्या की मौत के बाद दो और बच्चों की अस्पताल के बाहर ही मौत हो गई।
एक और बच्चे की मौत हो गई है यहाँ पर। कितना, क्या इतनी उम्र है, क्या उम्र है, क्या उम्र है, क्या उम्र है इसकी? ये देखिए, ये तस्वीरें आम हैं। 1 साल का बच्चा है, उसकी मौत हो गई है। और ये यहाँ पर ये तीसरी मौत है जो हमने कैमरे पे रिकॉर्ड की है।
40 साल के राम तीरथ अपनी 17 साल की बहन शिवानी को कंधे पर उठाए अस्पताल परिसर में दर दर भटक रहे हैं। शिवानी को बुखार है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कई घंटों तक भटकने के बाद राम तीरथ हार कर अपनी बहन को घर वापस ले गए। राम तीरथ का कहना है कि अस्पताल में ना तो इलाज मिला और ना स्ट्रेचर।
आशा वास
आया, चार बजे की लड़की डरी है, कोई आराम नहीं मिला अभी तक,
सुनवाई नहीं कर रहे हैं,
सुनवाई है कोई,
सुनवाई नहीं है आपकी,
कल चार बजे के
डरे कल के, कोई सुनाई है स्कूल
नहीं एडमिट कर रहे हैं, कह रहे घर ले जाओ
और क्या, अब जब घर तो ले जाएंगे, जब कोई सुनवाई नहीं करेंगे तो फाइल मांग रहे हैं, फाइल भी नहीं दे रहे, कहीं अंत कहीं ले जाए तो उसको दिखा दे।
45 साल के भोला भी बुखार से तपती अपनी 11 साल की बेटी को अपने सीने से लगाकर घर वापस ले जा रहे हैं। भोला का कहना है कि अस्पताल प्रशासन ने जांच के लिए बेटी का सैंपल भेजा है और कहा है जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक भर्ती नहीं करेंगे।
इसकी मैंने खून की जांच कराई, वो रिपोर्ट मिलेगी शाम को, जब उसका इलाज होगा
तब इलाज होगा। हाँ। बोला रिपोर्ट नहीं मिल रही तो इलाज नहीं करेंगे,
नहीं हो रहा तो क्या करूँ, अब मैं घर ले जा रहा हूँ।
फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के पीडियाट्रिक वार्ड के बाहर बुखार से तपते लगभग 20 से 25 बच्चे ऐसे ही जमीन पर लेटे अपनी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक अस्पताल में बेड नहीं मिलेगा। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता अनीजा का कहना है कि अस्पताल में ना बेड की कमी है और ना डॉक्टरों की, लोग घबरा रहे हैं जिस वजह से अस्पताल के बाहर अफरा तफरी का माहौल है।
हमारे पास दो पेशेंट्स ब्रॉड डेड आए थे और एक पेशेंट आप बता रहे हैं तो उसका एकदम से हुआ था, पेशेंट्स का एडमिशन हो रहा है, किसी को मना नहीं किया जा रहा है, पेशेंट्स आया होगा उसके अटेंड किया जा रहा है, हमें शासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद से हमें 30 डॉक्टर्स दिए गए हैं जो कि स्पेशलिस्ट हैं और उसके बाद से 15 डॉक्टर्स हमने भी चुने हैं यहाँ के लिए, अलग से हमने अपॉइंट किए हैं, साथ में हमारे ट्यूटर्स और लोग भी काम कर रहे हैं जो सिर्फ ऊपर का मैनेजमेंट देखते हैं, स्टाफ नर्सेज हमने काफ़ी मात्रा में बढ़ा दिए हैं। इंसानियत के नाते सबको काम करना चाहिए और एक अच्छा मैसेज सबको ये क्लियर करना चाहिए कि जो पेशेंट हमारा सिक है हम उसको अटेंड कर पाए, हमारा कियोस्क का स्थिति अगर होगा तो हमारा नॉर्मल पेशेंट बीच में कहेगा हमें ले लो तो हम सिक पेशेंट को नहीं देख पाएंगे।
अस्पताल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रचार की बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई है और उसके ठीक नीचे बच्चे बुखार से तड़पते नजर आते हैं।
आज सुबह से हमारे सामने 3 बच्चों की अस्पताल के बाहर मौत हो गई है। ऐसे ही बच्चे पूरा दिन इंतजार करते हैं बुखार में तपते हुए कि इनकी रिपोर्ट आए, उनको अस्पताल में दाखिला मिल जाए, और ये लगभग 1 महीने की कहानी है। हर रोज ऐसे ही अस्पताल के बाहर अंदर बच्चों की मौत हो रही है, ऐसी बिलखती माएं यहाँ से गुजरती हैं, सब असहाय हैं, प्रशासन कह रहा है सब ठीक है पर जमीनी हकीकत बेहद दर्दनाक है। फिरोजाबाद में सहयोगी अशोक महाले और जितेंद्र किशोर के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई बयान मिलेंगे कि यूपी में इतने नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, उन बयानों में यह सब डिटेल नहीं होता है कि डॉक्टर कितने नियुक्त हुए हैं, रोगों के विशेषज्ञ कितने बनाए गए हैं, मेडिकल कॉलेज की संख्या ही बताई जाती है। यह खबर अप्रैल 2017 की है, अमर उजाला की है कि योगी सरकार यूपी में 6 नए एम्स और 25 नए मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम शुरू करने जा रही है। क्या आप बता सकते हैं कि 6 नए एम्स कौन कौन से हैं? क्या ये बयान हेडलाइन के लिए ही था? गोरखपुर और रायबरेली एम्स का तो पता चलता है लेकिन बाकी 4 कहां गए? इसमें से भी रायबरेली एम्स को 2009 में मंजूरी मिली थी और गोरखपुर एम्स को 2016 में। इसके 2 साल बाद सितंबर 2019 में नवभारत में खबर छपती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में 2020 तक 15 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। सीएम योगी ने कहा है कि उनकी सरकार के शासनकाल में 1 दर्जन से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स का निर्माण कार्य आगे बढ़ा है। यहाँ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 2 एम्स के निर्माण का काम बढ़ा है लेकिन 6 एम्स वाली बात गायब है जो 2017 की खबर में कही गई थी। 25 जुलाई 2021 के हिंदुस्तान टाइम्स में बयान छपा है कि जल्दी ही यूपी के सभी 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, ये सब बयान है। जुलाई 2021 के हिंदुस्तान में खबर छपी है कि यूपी में 2016 से 20 के बीच 32 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति मिली है, इसमें से 8 मेडिकल कॉलेज चालू हो पाए, यानी मेडिकल कॉलेज खोलने की संख्या 25 से होती हुई 30 पर पहुंचती है और 75 हो जाती है, लेकिन चालू है 8। ये सब इन खबरों के आधार पर कह रहा हूं। जुलाई महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कह दिया कि यूपी में 2017 तक 12 मेडिकल कॉलेज ही थे। स्क्रोल वेबसाइट ने इस पर फैक्ट चेक किया है। 22 जुलाई 2016 का लोकसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने एक रिपोर्ट पेश की है, ये उनका बयान है। फगन सिंह कुलस्ते मंत्री थे। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2016 तक यूपी में 38 मेडिकल कॉलेज थे। फिर ये बार बार 12 मेडिकल कॉलेज की संख्या कहां से आ जा रही है? लोकसभा में सरकार का जवाब और प्रधानमंत्री का बयान अलग क्यों है?
आज यूपी में गांव के स्वास्थ्य केंद्र हो, मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व सुधार हो रहा है। 4 साल पहले तक जहां यूपी में दर्जन भर मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, उनकी संख्या अब करीब करीब 4 गुना हो चुकी है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजों का निर्माण अपने अलग अलग चरणों में है।
2016 में प्रधानमंत्री के ही मंत्री लोकसभा में बता रहे हैं कि यूपी में 38 मेडिकल कॉलेज हैं, तो फिर प्रधानमंत्री 12 कहां से बता रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान यूपी की अलग ही प्राथमिकता तय कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज तक नहीं बता सके कि तालिबान आतंकवादी है या क्या है। कम से कम यही बता दें कि योगी जी का अब्बा जान कहना सांप्रदायिक है या नहीं। आए दिन ऐसे बयानों के जरिए गोदी मीडिया को खुराक दिया जा रहा है, ताकि हिंदू मुस्लिम नेशनल सिलेबस की विधिवत चर्चाएं होती रहें। इस देश में 80 करोड़ लोग मुफ्त अनाज पर आश्रित हैं। उनकी क्षमता इतनी नहीं है कि 2 वक्त का अनाज खरीदकर खा लें। 80 करोड़ ये गरीब बता रहे हैं कि उनकी आर्थिक तरक्की अधूरी रह गई। आर्थिक नीतियों ने लोगों को गरीब बनाया है। उन तक अनाज का पहुंचना सरकार की कुशलता नहीं, बल्कि उसकी आर्थिक नीतियों की असफलता है। राजनीति ने कितनी चालाकी से मुश्किल से मिल रहे 2 वक्त के अनाज का बंटवारा हिंदू मुस्लिम तर्ज पर कर दिया। फिर लोग बताएं कि 200 रुपए सरसों का तेल क्यों हुआ, क्यों मिल रहा है? क्या कोई अब्बा जान तेल पी जा रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान ने सबको आहत किया है। इस तरह के बयानों से एक समुदाय को टारगेट किया जाता है।
योगी ने अब्बा जान कहकर अखिलेश यादव पे फिर हमला किया। कुशीनगर की सभा में कहा कि अब्बा जान कहने वालों ने सरकारी राशन बाहर बेच दिया। दरअसल यूपी में 2002 से 2010 के बीच खाद्यान्न घोटाला हुआ था। इसमें पीडीएस, अंत्योदय और मिड डे मील का अनाज खुले बाजार में बेचा गया। इस दौरान 2002 में बीजेपी बीएसपी की साझा सरकार, 2003 में मुलायम सिंह की सरकार और 2007 में मायावती की सरकार थी, लेकिन योगी ने इसे दूसरा रंग दे दिया।
अब्बा जान कहने वाले हराशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था, और आज कोई गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा।
योगी के इस बयान पे तीखी प्रतिक्रियाएं हुई। कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि बीजेपी की मंशा हमेशा मुसलमानों के लिए जहर, नफरत और खुल्लम खुल्ला सांप्रदायिक एजेंडे पे चुनाव लड़ने की रही है। यहां एक सीएम दोबारा चुने जाने के लिए दावा कर रहे हैं कि हिंदुओं का राशन मुस्लिम खा गए। टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया कि भारत में चुना हुआ मुख्यमंत्री सांप्रदायिकता भड़काने का दोषी है। यह आईपीसी की दफा 153 का उल्लंघन है। कोई स्वतः संज्ञान ले, सुप्रीम कोर्ट, यूपी पुलिस। वरिष्ठ पत्रकार तवलीन सिंह ने ट्वीट किया कि यह हेट स्पीच है। एजाज नाम के एक शख्स ने ट्वीट किया कि यूपी में यूनेस्को की 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी। ये सब किसी के अब्बा जान ने बनाई है। पूर्व वित्त सचिव डॉक्टर अरविंद मायाराम ने ट्वीट किया कि काश मैंने अपने पिता को अब्बा जान पुकारा होता, यह उस पिता से रिश्ते का कितना प्यारा इजहार है जो आपको मुसीबत से बचाने के लिए हिफाजत का आसमान आपके सिर पे तान देता है। अखिलेश यादव के साथ ये एक बार और भी हो चुका है। 6 अगस्त को लखनऊ में एक मीडिया कॉन्क्लेव में योगी ने कहा कि हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये हम ही ने कहा है और हमने कितना सच किया है। ये आज जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है, उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। अखिलेश यादव ने 7 अगस्त को पार्टी दफ्तर में हो रहे कार्यक्रम में इस पे पूछे जाने पे सख्त नाराजगी जताई थी।
मैं तो केवल एक ही कहूंगा बात, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। कल मैंने इंटरव्यू सुना है, हमारा आपका मुद्दों पे झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना अपने आपके पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपनी भाषा का संतुलन रखें और जिनका आप स्वागत कर रहे हो उनको आपने लूटा है पूरा का पूरा लोकतंत्र।
अयोध्या आंदोलन के दौरान मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव को बीजेपी आरएसएस के एक वर्ग ने मौलाना मुलायम कहना शुरू किया था। सियासत के जानकार कहते हैं कि इसका मकसद खुद को हिंदू जनता का खैर ख्वाह और दूसरे को मुस्लिम परस्त साबित करना होता है ताकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराया जा सके।
पूरा उत्तर प्रदेश बेरोजगारी, महंगाई, हत्या, लूटपाट इससे गूंज रहा है, महिलाओं का चीर हरण हो रहा है, सरेआम गोलियां चल रही हैं। आप उनपे बात नहीं करने के ऊपर आप सामाजिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस देश के मुख्यमंत्री को, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि लोगों के मुद्दे क्या हैं। ये अब्बा जान और ये अम्मी जान कह के आप मुद्दों से मत भटकाइए।
सियासत के जानकार कहते हैं कि चुनावों में एक लड़ाई परसेप्शन की भी लड़ाई होती है। अगर समाज में ये परसेप्शन बन जाए कि एक वर्ग दूसरे वर्ग के हक के ऊपर डाका डाल रहा है तो ये दो वर्गों के बीच में ध्रुवीकरण का सबब बन सकता है। सियासत इस आग में घी डालती है, इसका चुनावी फायदा होता है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।
समाज में दिल दुखाने वाला यह बयान देकर किसे खुश किया जा रहा है? जिसे खुश होना चाहिए वो तो अस्पतालों के बाहर मारा मारा फिर रहा है, उसके बच्चे मर जा रहे हैं और अस्पतालों में भर्ती नहीं करा पा रहे हैं। क्या एक मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान देना चाहिए? हर किसी के अब्बा जान उसकी जान होते हैं। एक समुदाय को लगातार अपमानित करने की राजनीति वाले प्रदेश के लोगों को सोचना चाहिए कि इससे क्या मिला। यूपी में 5 साल से योगी जी मुख्यमंत्री हैं, कम से कम एक श्वेत पत्र ही पेश कर देते कि कौन से अब्बा जान हैं जो राशन खा जाते थे और तस्करी करते थे, कितना राशन बांग्लादेश और नेपाल जाता था। बांग्लादेश टेक्सटाइल के क्षेत्र में भारत से कहीं आगे निकल गया है, उससे होड़ लेने के लिए सरकार को 10,000 करोड़ का पैकेज भारतीय टेक्सटाइल उद्योग को देना पड़ रहा है। वह बांग्लादेश कब से राशन के अनाज की तस्करी से अपना काम चलाने लगा? रविवार को इंडियन एक्सप्रेस में छपे इस विज्ञापन को लेकर चर्चा होती रही कि यूपी के विज्ञापन में कोलकाता के फ्लाईओवर और 5 सितारा होटलों की तस्वीर लग गई है। अखबार ने अपने मार्केटिंग विभाग की गलती की बात कही, लेकिन क्या अब इस तरह के विज्ञापन अखबार अपने स्तर पर तैयार करने लगा है या सरकारी विभाग की तरफ से नियुक्त विज्ञापन एजेंसी बनाकर भेजती है? क्या अखबार सरकार का जनसंपर्क विभाग बन गया है? पारदर्शिता के इस तथा कथित युग में आप इतनी बुनियादी बात नहीं जान पाते हैं कि इस विज्ञापन के पीछे किसकी जवाबदेही है। यह पहला मौका नहीं है। एक बार गृह मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट में भारत पाकिस्तान सीमा की जगह मोरक्को और स्पेन की तस्वीर छप गई। मोदी राज की बात कर रहा हूं। पीआईबी ने प्रधानमंत्री मोदी के चेन्नई दौरे की तस्वीर को फोटोशॉप करके जारी कर दिया। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार के एक मंत्री ने वियतनाम के पुल की तस्वीर को राज्य के विकास की तस्वीर के रूप में पेश कर दिया। कुछ लोगों को पता चल गया है कि झूठ से बड़ा सच कुछ भी नहीं, और आपको इसके बाद ब्रेक ले लेना चाहिए। कोरोना काल में सबसे ज्यादा व्यापार व्यवसाय प्रभावित हुआ। खरगोन जिले के महेश्वर का महेश्वरी साड़ी उद्योग भी अछूता नहीं रहा। यहाँ की प्रसिद्ध महेश्वर साड़ियां देश सहित विश्व में अपनी पहचान रखती हैं। लेकिन अब कारोबारी कर्मचारी सब मुश्किल में हैं, कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है।
कहते हैं होलकर वंश की अहिल्याबाई ने मांडू गुजरात के कारीगरों को महेश्वर में बसाया। यह बनी साड़ियां जीवंत, चटकीले रंग, धारीदार या जिकनुमा बॉर्डर, खास रंग की किनारी, सुंदर डिजाइन की वजह से पूरी दुनिया में पहचानी जाती हैं। लेकिन कोरोना ने इन करघों को थामने वाले हाथों में कहीं सब्जी का ठेला पकड़ा दिया है।
काम बंद हो गया है तो ये धंधा करना पड़ रहा है।
काय का?
प्याज आलू सब्जी भाजी।
पहले काय का काम था?
हेडलूम का साड़ी बनाते थे।
तो किसी के हाथों में बेलचा। वसीम अंसारी पहले हफ्ते में 3,000 रुपए तक का काम कर लेते थे, अब बमुश्किल आधा कमाते हैं, वो भी अपने हुनर को छोड़कर।
घर परिवार चलाने के लिए जबरन मजदूरी करना पड़ी मुझे, इससे ज़्यादा मेरे पास तो चारा नहीं। मैं पहले 2500-3000 का काम करता था, अब बेलदारी में 1500-1600 ये पैसे मिल रहेगा।
कितने दिन में?
एक हफ्ते में। और बारिश आ जाती है तो फिर काम की छुट्टी, मतलब परिवार में बहुत दिक्कत आ रही है परिवार चलाने की।
बुनकरों के पास माल तैयार है लेकिन मांग नहीं है। 80% कामकाज प्रभावित हुआ है। महेश्वर देवी अहिल्या की पवित्र नगरी पर्यटकों और विदेशी सैलानियों से भरी रहती थी, फिल्मों की शूटिंग का दौर भी चलता था। कोरोना की वजह से यहां सैलानियों और विदेशी पर्यटकों का आना जाना कम हो गया है। ऐसे में महेश्वरी साड़ियां बेचने वाली दुकानों में रौनक नहीं है। कपड़ों के कई शोरूम बंद हो गए हैं, जो चल रहे हैं वहां खरीदार नहीं है। हैंडलूम कारोबारी भी परेशान हैं।
मेरे कारखाने में जो है 25 से 30 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो अभी जो लॉकडाउन लगा है उसकी वजह से ये हुआ है कि जो कारीगर हैं वो भी अब बंद हो गए हैं, और उसके बाद जो रॉ मटेरियल का जो रेट है वो ये मान के चलो कि आसमान छू गया है। तो मैं अब रॉ मटेरियल का रेट लेने में भी, ख़रीदने में भी बहुत परेशानी हूँ, और कारीगर भी जो है कि अब बिल्कुल जब काम है ही नहीं तो वो काम भी कर नहीं पा रहे हैं। भारत वस्त्र मंत्रालय में भी ये चीज़ें सब मैं देता हूँ, लेकिन अभी क्या हुआ है कि एकदम चीज़ें ऑर्डर आना बंद हो गया, तो उस वजह से मान के चलो कि हम लोग जो काम 100% करते थे वो मान के चलो कि 25% कम भी हो गया है, और प्लस 25% रॉ मटेरियल के साथ साथ बढ़ने की वजह से वो भी कम हो गया है। तो इस वजह से हम लोगों की जो अभी दैनिक स्थिति थी वो तो बिल्कुल बिगड़ चुकी है।
महेश्वर में 3,247 हैंडलूम थे, जिसमें 9,360 बुनकर और सहायक काम कर रहे थे। यहाँ पर 3 लघु हैंडलूम इकाइयाँ कार्यरत हैं, लेकिन कोरोना की वजह से 80% कामकाज प्रभावित हो गया।
बहुत सारे लूम बंद हो गए हैं, लॉकडाउन खुल भी गया तो फिर भी बाजार में उठाव धीरे से आ रहा है। अभी कुछ लोग छोड़ के दूसरा काम करने लग गया, जैसे कोई गारा मिट्टी का भी काम करने लग गया, कोई सब्जी बेचने लग गया। विभाग से हम कह भी रहे हैं कि इनको इनकी हेल्प करने के लिए कुछ किया जाए, और कर भी रही है विभाग।
महेश्वरी साड़ियां होती तो प्लेन है, लेकिन बॉर्डर पर फूल पत्ती बूटी हंस मोर की सुंदर डिजाइन होती है। पल्लू पर 2-3 रंगों की मोटी पतली धारियां होती हैं। पहले ये प्राकृतिक रंगों से बनती थीं, अब कृत्रिम। पहले इसे बनाने में सुनहरे रेशमी धागे लगते थे, अब तांबे जैसे कृत्रिम धागे। चीन से आयातित रेशम मिलने में दिक्कत थी, सो अब देसी रेशम से साड़ियां बन रही हैं। महेश्वर में साड़ी के अलावा सलवार सूट, दुपट्टे, स्टॉल रनिंग क्लोथ भी बनते हैं, जिसके लिए कॉटन का धागा कोयम्बटूर, सिल्क का धागा बेंगलुरु, जरी सूरत और कलर डाई महाराष्ट्र से बुलाई जाती है। कहते हैं कभी रानी अहिल्याबाई ने अपने शाही मेहमानों को तोहफा देने के लिए सूरत, मालवा, हैदराबाद से बुनकर बुलवाए और खुद इन साड़ियों को डिज़ाइन किया, जिनका नाम उनकी राजधानी महेश्वर के नाम पर पड़ा। ये साड़ियाँ थोड़ी महंगी हैं, 2,000 रुपये से ज़्यादा, लेकिन बनारसी और कांजीवरम से कम, इसलिए ये शाही शौक आम लोगों का बना। लेकिन अब इस आम लोगों को शौक पर कोरोना की नज़र है, जिससे ये शहर, यहाँ के बुनकर और ये साड़ियाँ सब प्रभावित हुए हैं। खरगोन से आसिफ और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग बारी, एनडीटीवी इंडिया।
आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।